Voglio.
Vedi?
Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava.
Yeah.
हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
माइक थोड़ा उतना जोर से नहीं बोल रहा है ना, तो आप सब लोग ताली बजाओ, आप जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे गौर प्रेमानंद जय विष्णुपाद परमंत प्रेमराज का जलस्तु श्री श्रीमदेशी भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय विष्णुपाद परमंत प्रेमराज का जलस्तु श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्तमंद की मथुरा वृंदावन धाम की गंगा माई जमुना माई की श्याम कुंड राधा कुंड की गिरिराज गोवर्धन जी की हिताई गौर प्रेमानंद बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अवद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके
भक्तिर भवती नष्टकी मम ज्ञान तिमरभिनस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरन्वितङ्गेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वदन्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं जागृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् ूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण प्रधान सहगण ललिता श्री विशाखानिता श्री कृष्ण करुणा सिंधु नील बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंस राधा कंसुभ कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभान सुते देवी परमानी हरि कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सर्वदेवं गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषसंयवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे देवकी वसुदेवं च निग्रहानिगडे गृहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोर्जनसंकया अनुवाद है। नारद ऋषि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे लोग देवता हैं और देखते कि गर्भ से जन्म लेने वाली कोई भी संतान विष्णु हो सकती है, अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उनके लोहे की जंजीरों में डाल दी। कंस ने इस भविष्यवाणी से सशंकित होकर कि विष्णु उसका वध करेंगे, हर संतान को इस आशंका से कि वह कहीं विष्णु न हो, एक एक करके मार डाला। तात्पर्य जीव गोस्वामी लिखते हैं, इस श्लोक की टीका करते हुए जीव गोस्वामी ने उल्लेख किया है, नारद मुनि ने कंस को यह सूचना कैसे दी, यह घटना हरिवंश में वर्णित है। देववश नारद मुनि कंस को देखने गए तो कंस ने उनका स्वागत किया। इसे नारद उसे बतलाए कि देवकी का कोई एक पुत्र विष्णु होगा, क्योंकि कंस का वध विष्णु द्वारा होना था। इससे नारद मुनि ने सलाह दी कि देवकी के किसी भी पुत्र को जीवित न छोड़ा जाए। नारद जी का उद्देश्य था इन संतानों की हत्या करने से कंस के पाप कर्म बढ़ेंगे, जिससे शीघ्र ही उसे मारने के लिए कृष्ण अवतरित होंगे। नारद मुनि से आदेश पाकर कंस ने एक एक करके देवकी के सारे पुत्रों को मार डाला। अजन संकया शब्द सूचित करता है विष्णु कभी जन्म नहीं लेते, अतः कृष्ण के रूप में उन्होंने सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लिया। कंस ने देवकी तथा वसुदेव से उत्पन्न सारे शिष्यों को मारने का प्रयास किया, यदि वह जानता था कि विष्णु उत्पन्न हुए तो उनका वध नहीं हो सकता। वास्तव में ऐसा ही हुआ, जब विष्णु कृष्ण के रूप में प्रवृत्त तो कंस उन्हें मार नहीं पाया। प्रत्युत भविष्यवाणी के अनुसार वह उन्हीं के द्वारा मारा गया। यह सच्चाई जान लेनी चाहिए कि कृष्ण का जन्म दिव्य रीति से होता है और ये असुरों को मारने के लिए लीला करते हैं, किंतु उनका वध नहीं किया जा सकता। जब शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण को इस तरह समझ लिया जाता है तो मनुष्य अमर हो जाता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगी तत्वतः सत्वादि हम पुनर्जन्म नीति माम अर्जुन। अर्जुन मेरा प्रादुर्भाव तथा कार्यों की दिव्य प्रकृति को जो जानता है, वह शरीर त्यागने के बाद इस भौतिक संसार में फिर कभी नहीं आता, अपितु तो मेरे धाम को प्राप्त होता है। फिर और बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत ट्रैफिक हाईवे पे हो रहा है, हम फंस गया था उधर ट्रैफिक, तो गाड़ी उधर ही छोड़ के आ गया, रिक्शे में आ गया, फिर भी लेट हो गया। तो कितने बजे तक कथा कर सकते हैं, पहले टाइम बताओ। 3 बजे तक, 1 घंटे में क्या होगा, 1 घंटे में कुछ होगा ही। हम तो 3-4 घंटा कथा करते हैं ना। अच्छा ध्यान से सुनना, और बच्चे लोग हल्ला ना करें, तो बच्चों को अपने गोदी में बैठा कर हल्ला करते हैं तो उनको बाहर छोड़ दो खेलने के, और बड़े लोग हल्ला करेंगे तो अपने आप खेलने के लिए जा सकते हैं, उनको छोड़ने की जरूरत। भगवान के जन्म के बारे में वर्णन है कि श्राप आकाशवाणी हुई ऊपर से, तो कंस ने अपनी बहन देवकी, कंस देवकी के चाचा की लड़की है, महाराज देवक की बेटी है देवकी, और अक्सर कथाओं में आता है देवकी कंस की बहन। कंस बहुत प्यार करता था, जैसे अपने चाचा चाची के बच्चों को कोई प्यार करता, तो कंस इस लड़की को बहुत प्यार करता था। तो उसकी शादी बड़ी धूमधाम से, आपने भागवत के 10वें स्कंद में पढ़ा होगा, दहेजों का वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने, 400 घोड़े रथ के साथ, 200 दासियां, ऐसे वर्णन है ना, हीरे जवाहरात, और खुद अपनी बहन को रथ में विदा करना चाहता था, तो अपने ड्राइवर से कहा सारथी से कि हम आज रथ चलाएंगे। तो भगवान ने ही आकाशवाणी कराई, ऐसा वर्णन भागवत में मिलता है। और आकाशवाणी में कहा कि जिस बहन को आप इतने प्रेम से छोड़ने जा रहे हो, उसी की आठवें पत्तों द्वारा आप मारे जाओगे। तो तुरंत उसने तलवार उठाई, कथा आपको मालूम है, और देव की गो वसुदेव को बंदी बना लिया। वसुदेव जी के कहने पर भी कि राजन, जन्म और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, ये तो वसुदेव जी की बात हम बता रहे हैं। हमने एक बार एक डॉक्टर देखा जसलोक हॉस्पिटल में, बहुत फेमस डॉक्टर, तो हम हर हॉस्पिटल में जाते हैं रोज, तो हमने सोचा डाकू को हम भी मिल लें, नाम सुना था हमने, चंबल का डाकू था बहुत फेमस, तो यहाँ इलाज कराने आया था जसलोक, तो हम गए थे उनकी खबर लेने। हमने कहा आपको मरने से डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा मरेंगे जब ना जब हमारा दिन पूरा होगा, ऐसी गोली लग जाएगी। उसने कहा पुलिस वाले चाहे रात दिन हमारे पीछे पड़े रहे, लेकिन हमारी मृत्यु तभी होगी जिस दिन हमारा समय पूरा होगा, डाकू बोला। तो लेकिन ये कंस डाकू से भी कम समझदार है, तो जैसे आकाशवाणी हुई तो घबरा गया। जन्म जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है और मृत्यु तभी होगी जब समय होगा पूरा। अब यह अलग बात है कोई कहे कि देखो हम भगवान की इस बात को झुठला सकते हैं, जैसे हम यहां से चर्च गेट जा रहे हैं तो हमारा गंतव्य स्थान जहां जाना है वो चर्च गेट है, लेकिन हम कभी रास्ते में ही उतर जाते हैं, देखता हूं कैसे चर्च गेट पहुंचता हूं मैं, रास्ते में उतर जाऊंगा, तो ये हमारी मर्जी है ना। वैसे हमें अपने हिसाब से चर्च गेट जाना चाहिए। तो कोई कहे कि मैं कैसे उम्र पूरा करता हूं देखता हूं, तुम आत्महत्या करके देखूंगा तो देखो, कई लोग आत्महत्या कर ले, ये हमारी अपनी इच्छा से हुआ। लेकिन जीव की मृत्यु तभी आती है जो निश्चित होती है उसे विधाता द्वारा। व्यास जी का एक शिष्य था दास, एक दिन व्यास जी ने उसको पूछा कि आप हमारी बहुत सेवा करते हो और आप वेतन तो लेते नहीं, तनख्वाह नहीं लेते, कुछ भी फैसिलिटीज हमसे नहीं लेते सुविधा, तो आप हमारी रात दिन सेवा क्यों करते हैं? तो उस दास ने कहा मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि मेरी मौत कब है, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, ये बता दीजिए मैं किस दिन कौन सी घड़ी यहां पर मरूंगा, मैं अपना टाइम लिख लेता हूं डायरी में, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि अपने मरना है। अब व्यासदेव जी ने कहा ये पता तो हमको भी नहीं है, चलो यमराज के पास चलते। यमराज से कहा तो यमराज ने कहा हमको भी मालूम नहीं, चित्रगुप्त हमको बताता है डायरी देख करके उस हिसाब से। तो चित्रगुप्त को पूछा, लेकिन चित्रगुप्त ने कहा इसका नाम हमारी डायरी में नहीं है। तो यमराज ने कहा अगर हमारे ऑफिस में इसका रिकॉर्ड नहीं है इसका मतलब ब्रह्मा जी के यहां होगा। तो व्यासदेव जी उनका दास जो नौकर था दास यमराज चित्रगुप्त को लेकर के ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हमारा ये शिष्य हमारा ये सेवक ये जानना चाहता है हमारी मृत्यु कब होगी। व्यासदेव जी ने कहा मैं अभी आपको रजिस्टर खोल के बताता। तो पढ़ने लगे कि आपके सेवक दास की मृत्यु ब्रह्मलोक में व्यासदेव जी चित्रगुप्त यमराज मृत्यु और मेरे ब्रह्मा के सामने अभी होगी, तड़क से मर गया क्योंकि उसकी मृत्यु वहां लिखी थी, क्योंकि ब्रह्मलोक में भी मृत्यु होती है। आ ब्रह्म बोनालो का पुनरावर्ती नोर्जुनो मामुपेति कौन तय और पुनर्जन्म न बिजते, ब्रह्मा जी को ही मरना पड़ता है। लेकिन मरने से घबराता कौन है? देखो ट्रेन में चढ़ने से कौन आदमी घबराएगा जिसके पास टिकट नहीं है, विदाउट टिकट है, चढ़ेगा फिर उतरेगा चढ़ेगा, और उसका कोई डेस्टिनेशन भी नहीं है, कहां जाना है कोई पता नहीं, बस ही घूमना तफरी लेना। इससे मरने से कौन आदमी घबराता है जिसके पास मरने के बाद कुछ व्यवस्था नहीं है? पापी लोग जिंदगी भर जो ऐश करते हैं, पैसा कमाया, भगवान का भजन कभी किया नहीं, सेवा कभी नहीं की, इनको मालूम है ऊपर जाके खूब डंडे पड़ेंगे चढ़ते हैं, और सुन उन्होंने रखाई है कि नरक में बहुत मार पड़ती है, वहां जान पहचान चलती नहीं, दादागिरी चलती नहीं, कोई मिनिस्टर पहचान का वो भी फोन नहीं कर सकता, करेगा तो उसी का फोन फोड़ देते हैं, तो मरने से घबराते। भक्त कभी भी मरने से नहीं घबराता। भक्त का क्या है, इधर भी आनंद उधर भी आनंद, क्योंकि उनने अपना टिकट निकाल के रखा हुआ है, भगवान का नाम टिकट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम। 16 रुपए का टिकट है, 16 अक्षर का। तो ये टिकट जिसके पास है यात्रा कर सकते हैं। जो सेवा है, साधु संघ है, ये जीव खर्च है। भगवान की कृपा जीव खर्च है, टिकट है, उसके बाद और पैसा भी तो है ना। खाली टिकट ही लेके थोड़ी घूमते हैं, फिर और कैश है, फिर आगे की व्यवस्था सब है। लेकिन मूल टिकट हरि नाम भगवान का। मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपया है, लेकिन आपने 500 का टिकट नहीं खरीदा, तो टीसी आपको बोलेगा टिकट दिखाओ। तो आप ऐसा कह सकते हैं, हम 500 का टिकट क्यों दिखाएं, हमारी जेब में 1 लाख रुपया है, 500 का टिकट लेने की हमको क्या जरूरत है, चलेगा? भले 1 लाख नहीं है, लेकिन हमको 500 का टिकट दिखाना पड़ता। वैसे हमने सत्कर्म किए, पुण्य किए, साधु संग किया, सब किया, लेकिन नाम नहीं लिया भगवान का कभी, तो गति नहीं होगी हमारी। नाम जरूरी। कंस यहां पर क्यों भयभीत है, अपनी बहन को जेल में डाल दिया कि इसके गर्भ से मैं मारा जाऊंगा, 8वें गर्भ से तुम अपनी कैसे रक्षा करो? क्यों? क्योंकि उसे मालूम है मैं अत्याचारी हूं, पाप करता हूं, तो जब मैं मरूंगा तो मेरी दुर्गति होगी। ये कंस स्वभाव वाले लोगों का भाव है। आपने कई दफे देखा होगा लोग बिल्कुल मरना नहीं चाहते। भगवान भी कहते हैं भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव से, न तथा मे प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर न च शंकर चरण न श्री नैवात्मा च यथा भवान। भगवान कहते हैं अपने बारे में उद्धव से कि मैं अपने शरीर को भी इतना प्यार नहीं करता। उसमें एक प्रश्न है उद्धव जी का, उसका उत्तर देते हैं कि हम अपने बेटी को भी इतना प्यार नहीं करते, अपने नाती को भी नहीं करते। नाती कौन है? शंकर जी। बेटा कौन है? ब्रह्मा जी। न तो संकर्षण न श्री, हम अपने भाई को भी इतना स्नेह नहीं करता, लक्ष्मी जी को भी नहीं करता। भगवान यहां तक कहते हैं मैं अपने विग्रह को भी इतना प्यार नहीं करता, हे उद्धव जितना मैं तुमको प्यार करता हूं, यानी भक्तों को, यानी अपने विग्रह से भी ज्यादा भक्तों की महत्ता होता। लेकिन दधीच महाराज के प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब देवता लोग दधीच को हड्डी मांगने के लिए आए हैं कि बट्टासुर को मारने के लिए आपकी हड्डी से वज्र बनाएंगे, तो दधीच जी कहते हैं ये बात कि मनुष्य को ये देह बहुत प्यारी होते हैं। ये वास्तव में शरीर किसने हमको दिया है? भगवान ने हमको दिया है। कोई व्यक्ति हमको 1000 रुपया दे और ये कहे कि हम परसों को ले लेंगे आपसे, तो जब तीसरे दिनों मांगने आए तो हमको उसका 1000 रुपये देना चाहिए ना, वायदे के मुताबिक। तो ये ढांचा भगवान ने हमको कुछ दिन इस संसार में उनकी सेवा करने के लिए दिया, और समय पूरा हो गया, सेवा तो हमने कभी की नहीं, फिर भी भगवान कहते हैं चलो इतने दिन बहुत आपने आनंद ले लिया, वापस करो शरीर, यानी मरो। कितना चिल्लाते हैं हम बताओ, उन्होंने देते नहीं, मेरा शरीर है किसका है? भगवान का है। तो जिसकी बस है उसको वापस करना चाहिए। एक मौलाना की पत्नी, एक मौलाना थे मुस्लिम, मस्जिद में पढ़ाते उनको मौलाना कहते हैं। तो एक दिन बाहर गए थे, दो बेटा थे उनके, दो बच्चे। तो एक दिन मौलाना जी मस्जिद से पढ़ा के आए बच्चों को, तो अपनी पत्नी से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। जैसे हर कोई पिता पूछता है अपनी पत्नी को जब बाहर से आता है, बच्चे किधर हैं, बेटी किधर है। तो मौलाना जी ने पूछा बच्चे कहाँ हैं, पत्नी ने कहा खेलने गए हैं, अभी आ जाए। तो मौलाना की पत्नी मौलाना के पास बैठ करके बोली कि मैं आपसे आज एक बात पूछना चाहती हूँ। मौलाना जी बोले बोलो पूछो। तो पत्नी ने कहा मैं 6 महीने पहले अपनी एक सहेली से हार मांग के लाई थी सोने का, क्योंकि हमको किसी की शादी में जाना था। तो आपको मालूम है मैं 6 महीने पहले हार लाई थी और पहन के भी गई थी, फिर हमने फोटोग्राफी की, फोटो भी खींचा, वीडियो शूटिंग भी किया। तो वो हार को मेरे पास 6 महीना हो गया है, तो लेकिन वो 2-3 दिन से मेरे घर पर हार मांगने के लिए आती है। तो लेकिन वो हार इतना अच्छा है कि मैं बार बार हार को निकालती हूँ, फिर अंदर रख देती हूँ, कहती हूँ कि कल दूंगी। मौलाना जी ने कहा ये बात तो अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका हार आपने उससे 2-3 दिन के लिए मांगा और वैसे भी 6 महीना आपके पास हार को हो गया, तो वो उसका हार है, हमको उसको हार वापस कर देना चाहिए। लेकिन मौलाना की पत्नी बोली कि मुझे हार बहुत अच्छा लगता है और मेरे गले में अच्छा सस्ता भी है, जब मैं उसको पहनती हूँ बहुत अच्छी लगती है। अरे मौलाना जी ने कहा अच्छी लगती है तो क्या हुआ, दूसरे का हार पहन के क्या करेंगे हम, वो तो दूसरे की चीज है ना। तो मौलाना की पत्नी ने कहा पक्की बात हो गई, वो हार हमारा नहीं, नियम के मुताबिक हमने इतने दिन उस हार से अपना शौक पूरा कर लिया और जब भी पहना था अपना श्रृंगार कर लिया, तो हमें वो हार वापस कर देना चाहिए। मौलाना ने कहा जरूर कर देना, आज शाम को अगर सहेली आएगी हार उनको दे देगा। फिर मौलाना जी ने पूछा बच्चे नहीं आए, बच्चे हमारे कभी इतनी देर तक खेलते नहीं थे, आज कहाँ खेलने चले गए इतने। तो मौलाना की पत्नी मौलाना को दूसरे कमरे में ले गई घर के। तो आज दो ताबूत थे, तो जब मौलाना जी बार बार पूछने लगे मैं तुमको बच्चों के बारे में पूछता हूँ, बच्चे कहाँ हैं, तुम हमको इधर उधर क्यों घुमाती है। मौलाना की पत्नी ने कहा मैं यही जवाब तुमको देना चाहती हूँ। तो कहा ताबूत का ढक्कन उठाइए, जैसे ही ताबूत का ढक्कन उठाया तो दोनों बच्चे मरे हुए थे ताबूत के अंदर। तो इतने में मौलाना बहुत चिल्लाने लगा, तो मौलाना की पत्नी ने कहा अभी अभी आपकी मुझसे बात हुई है, हुई नहीं अभी अभी, अभी आपकी मुझसे पूरी बात हुई कि सहेली का हार हमको वापस कर देना चाहिए। तो वैसे हमें अल्लाह ने, भगवान ने दो हार कुछ दिन के लिए दिए थे, तो हम चार वापस ले लिए, तो इसमें रोने की कौन सी बड़ी बात है। जैसे आप मुझे कहते हो सहेली का हार वापस कर दो क्योंकि हमारा नहीं है, तो वैसे ये बच्चों के मरने पर आप क्यों रोते हैं। जब परमात्मा ने हमको इतने दिन दिया, हमने इनसे खेला कूदा गोदी में बिठाया, इनके सोतली बोली सुनी, आनंद लिया, अब समय हो गया, अल्लाह ने वापस मांगा है तो हमको दे देना। लेकिन हम दूसरी वस्तु के बारे में भले ही सहन कर जाएं, लेकिन मनुष्य शरीर इतना प्यारा होता है, और जबकि ये कचड़े का ढेर का है, अंदर क्या है। किसी का पेट फाड़ के देखो, कभी कोई मौसमी का जूस ऐसा कुछ निकलता, कितना सुंदर शरीर, कितने ठाट बाट से, करोड़ 2 करोड़ BMW में हम घूमते हैं, क्या लेके, कचड़ा। हम एक बार हमारे गुरु भाई डॉक्टर हैं, तो हमारे एक भक्त का ऑपरेशन करना था, उसके हाथ में छेद हो गया। तो प्रभु जी मुझे बोले कि प्रभु जी आज मैं रात को 2 बजे ऑपरेशन करूंगा, तो आप भी मेरे साथ थिएटर में रहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम भी गए, तो उन्हें पूरा पेट फाड़ा था, सारी आंतड़ियां प्लेट पर रखी। हम उधर ही खड़े थे, अरे इतनी गंदी बाश आ रही थी, वो इधर और था, सारा मसाला उसका निकाल के अलग रख दिया। फिर आंतड़ी धोनी जिधर छेद हुआ था उसका सिलाई किया और फिर अंदर रख। तो हम जितनी देर थे हम खड़े नहीं हो पाए इतनी, क्योंकि सब कचरा टॉयलेट वगैरह सब बाहर थैली के साथ, और उसी को अंदर रख दिया, सिलाई कर दिया, साहब आ रहे हैं, साहब का ऑपरेशन हो गया। बहुत साहब कौन है जो कचरा लेके घूम, स्थिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीर, 5 तत्वों से शरीर बना है, इसके अंदर कचरा भरा है। ऐसे शरीर के प्रति मोह को, जब हमको मोह होता है तब हम दूसरे की अन्याय करते हैं। जैसे कोई हमको फोन करे हम तुमको जान से मार डालेंगे, तुरंत पुलिस के पास जाएंगे, वकील के पास जाएंगे, या सब रिश्तेदारों को फोन, या ज्यादा सेठ हैं तो 10-20 लड़के खड़े करके कोई हमको मारे नहीं। ये क्या है आज, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। इसी देहात्म बुद्धि का वर्णन भागवत के 5वें स्कंद में महाराज जड़ भरत और रघुगुण वार्ता, जब रघुगुण ने महाराज भरत को गंदी गंदी बातें कही फालकी उठाने पर, कटाक्ष किया, तीखी बातें कहने लगा, तब महाराज रघुगुण उसको समझाते हैं कि तुम गाली देता है, तीखी तीखी बात करता है, किससे बात करता है, हमारे शरीर को, क्योंकि हम तो शरीर नहीं है। सिद्धार्थ गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो देहात्म बुद्धि, भागवत में बताया देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना, और ये कैसे उठेंगे, जब इस शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाए, भगवान के नामों का जाप करना, एकादशी व्रत रखना, संतों के साथ भक्तों के साथ सेवा करना, भागवत कथा सुनना, गीता सुनना, पढ़ना, और भगवान का नाम जीवा पर रहेगा, तो ये जो हमारा जड़ शरीर है ये छूट करके हम जब भगवान की सेवा में जाएंगे तो शरीर हमारा दिव्य हो जाता है, ऐसा वर्णन कर। भगवान का शरीर दिव्य होता है, उनके शरीर में एक कचड़ा पट्टी टॉयलेट बाथरूम वगैरह नहीं, भगवान के शरीर, हमारे शरीर में ये कचड़ा तो है ही, ऊपर से और ऊपर कचड़ा, कौन सा, गंदी विचार। भागवत में वेणु गीत में बताया भगवान को मुरली प्रिय क्यों है, भगवान बांसुरी को अपनी होठों में लगा के रखते हैं, मुरली वादन करते हैं, क्यों प्रिय है, गोपियां एक दूसरे से बात करते हैं। तो पहला गुण एक गोपी बताती है मुरली का, मुरली प्रभु को इसलिए प्रिय है कि ये जंगलों में धूप और सर्दी सहन करती है, बांस की लकड़ी की बनती है ना मुरली, तो जंगल में बांस होता है, सर्दी गर्मी सहन करता है, हवा के झोंके सहन करता है, लोग पत्थर मारते हैं उसको सहन करता है, फिर लकड़हारा इसको काट के लाता है, फिर उसको कितना इसको खुरच देता है, इसकी खाल निकाल देता है, फिर खाल निकाल के छेद कर देता है, और छेद भी कैसा करेगा, पूरी आंतड़ियां निकाल देता है अंदर, मुरली के अंदर आंतड़ी होती है, तो गोपी कहती है भगवान को मुरली इसलिए प्रिय है, इसने बहुत तपस्या की है जंगलों में, और तपस्या करने के बाद में देखो उसका पेट एकदम खाली है, खाली मतलब कुछ भी कचरा भरा हुआ। दूसरी गोपी कहती है नहीं नहीं, मुरली इसलिए प्रिय है कि मुरली में छेद होते हैं, हर जगह होल होते हैं ना, तो इसका जो चरित्र है जीवन है पूरा शरीर भगवान के आगे एकदम खुला है, कुछ छुपाए नहीं, इसलिए भगवान इसको प्यार करते। हम अपने चित्रों को छुपाते हैं, मुरली नहीं छुपाती, छुपाती है। और मुरली में सुर कब आएंगे, जब उसके होल खुले रहेंगे। हम अपने चित्रों को, चित्र मतलब तो मुरली के अंदर का खोखा खाली होता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी कोई कचरा भरा हुआ नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मदमास्य कुछ, और हमारे अंदर इस समय कचरा भरा हुआ। ये तो हुआ ऊपर का कवर पैकिंग, जैसे कोई मिठाई का डिब्बा लेता है तो डिब्बा अंदर मिठाई, फिर मिठाई के डिब्बे का ढक्कन, फिर ऊपर से वो चमकीला हो, फिर ऊपर से एक रिबन, आजकल मॉल में पैकिंग सिस्टम है ना, तो जड़ शरीर में कचरा पट्टी पहले से भरा है, मूत्र टॉयलेट कितना ऊपर से खाते हैं सब, और ये ऊपर से पैकिंग और हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य का पैकिंग, और फिर मैं का रिबन टाइट करने के लिए मैं, लेकिन भगवान वेणु गीत के माध्यम से गोपियां बात बताती हैं, भगवान को ऐसे लोग प्रिय नहीं, मुरली जैसे लोग प्रिय, जिनके अंदर पूरा खोखा हो, खोखे में भी होल हो, छिद्र हो, और मुरली अपने छिद्रों को भगवान को समर्पित कर देती है। प्रभु आप किसी भी छिद्र में आप अपना मुंह लगा सकते हो, कहीं भी हमारी अपनी उंगली आप दबा सकते हो, किसी भी छेद को बंद कर सकते हो, पूर्ण समर्पित है, इसे भगवान मुरली वादन करते हैं। और हम मुरली कब बनेंगे, जब हम अपने छेदों को खोलेंगे। अभी हम अपने गुणों का बखान हर जगह करते हैं, अवगुणों का कहीं नहीं, छेद मतलब अवगुण, तो इन अवगुणों का बखान करना है। हमारे जितने गोस्वामी लोग हुए हैं किसी भी संप्रदाय में, और हमारे वैष्णव संप्रदाय में देखिए, बड़े बड़े वैष्णव आचार्य क्या कहते हैं, मैं अधम हूं। सूरदास जी भी पद लिखते हैं, क्या कहते हैं, मोसो कौन अधिक खल कामी कुटिल खल काम। सूरदास जी लिखते हैं पद में, मोसो कौन कुटिल खल काम, हे प्रभु मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन हो। वैष्णवाचार्य लिखते हैं, भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु महाराज जगन्नाथ बाबा जी महाराज, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्त विनोद ठाकुर के शिष्य कौन हुए, गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज। गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहते हमेशा, मैं जब मर जाऊं तो हमारे शरीर को रस्सी से बांध के नगर के सड़कों में घसीटते मिले थे। गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज, उनका चरित्र कैसा है, एक बार किसी ने उनको 2 रुपए दिया और उन्होंने जाके 2 रुपया भक्ति विनोद ठाकुर को दे दिया, कहा गुरुदेव कि कोई हमको आज शेर 2 रुपए दे गया था, तो बड़ा मुझे मालूम नहीं है कि मैं 2 रुपए को कृष्ण की सेवा में कैसे लगाऊंगा, इस 2 रुपए को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है, वो शेर दे के गया है, तो मुझे वो विधि मालूम नहीं है कि 2 रुपया मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊंगा, इसलिए आप ये 2 रुपया ठाकुर जी की सेवा में लगा। अनपढ़ थे लेकिन पूरा भागवत याद रहूंगा। और शिष्यों से कहते मैं पापी हूं तो एक दिनों मर गए, शरीर छोड़ दिया था। तो सब शिष्यों ने कहा हमारे गुरु जी की अंतिम इच्छा क्या थी, तो सब शिष्यों ने कहा एक ही इच्छा थी उनकी कि वो कहते थे जब शरीर छोड़े तो हमारे शरीर को रस्सी से बांध के नगर के सड़कों में घसीटते हुए ले जाना। तो सब रस्सी लेके तैयार हो गए बांधने के लिए। तब भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज खड़े हुए, वो भी उन शिष्य में से एक, कहा तुम लोग इतने योग्य हो गए कि अपने गुरु की अंतिम इच्छा को तुम लोग जानने लगे, इतने क्वालिफाइड हो गए तुम लोग। उनका उसके अंदर क्या भाव था ये भाव तो आप जानते नहीं। उन्होंने जो बात कह दी और ये कहते फिर से, तो सबने एक स्वर में कहा, भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज अकेले खड़े और सारे शिष्य एक तरफ, कहा नहीं नहीं गुरु जी की यही इच्छा थी कि उनके शरीर को घसीटा जाए रोड पर। भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा घसीटो मैं देखता हूं। वही गुरु महाराज के शरीर में रस्सी बांधेगा, वही घसीटने की कोशिश करे। अगर कोई 25 साल से सन्यासी है, अगर वो 25 साल से सन्यासी का धर्म का पालन कर रहा है वही ये काम कर सकता है। सब सन्यासियों का समूह है। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक सन्यासी से पूछा कितना साल हुआ सन्यास लिया, बोला 25। सच सच बताओ तुम 25 साल से सन्यासी है। सन्यासी का मतलब क्या है, कभी भी किसी भौतिक वस्तु का चिंतन नहीं, किसी स्त्री का चिंतन नहीं, तुमने सन्यास धर्म का सही सही पालन किया। चुप हो गया। अच्छा कहा 25 साल से नहीं 20 साल किया। 20 साल का आधा करो 10 साल किया, 10 का आधा करो 5 साल किया, 5 का आधा करो 2.5 साल किया, 2.5 का आधा करो 1.25 साल किया, 1.25 का भी आधा करो 6 महीने किया 7 महीने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कल रात तुम सन्यासी था, कल की रात तुम सन्यासी था। तो सिद्धांत महाराज कहते हैं 25 साल से वेश लिया है सन्यासी है। तब कहा अगर कोई भी ढोंगी गुरु महाराज की अंतिम इच्छा जानना चाहता है और यही इच्छा समझता है तो बांधो रस्सी। अगर कोई सही में सन्यासी है, सही में ब्रह्मचारी है, सही में गृहस्थ है, सही में बानप्रस्थ है, जो भक्ति जो गौर किशोर दास बाबा जी हमको शिक्षा दे के गए हैं, अगर हमने सचमुच अपने जीवन में उसका 100% पालन किया है तो वो उनकी इच्छा को समझ करके घसीट सकता है। हमने पालन तो किया नहीं कभी, उनके भावों को तो समझा नहीं, ये भाव बड़ी जल्दी समझ गए कि घसीट देना। तो कहा अगर कोई दिखावे में रस्सी बांध करके घसीटने की कोशिश करेगा तो जैसे ही वो रस्सी को खींचेगा उसका सर फट जाएगा। भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज ने एक भी आगे नहीं है, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अपने गुरु के भाव को जानते हैं। अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म नादि आवृतम अनुकुलीन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। रूप गोस्वामी का श्लोक भक्ति सामचंद में ये भाव चैतन्य महाप्रभु का है लेकिन रूप गोस्वामी लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रूप गोस्वामी से ये भाव तो हमारा है तुम कैसे जान गए। तो रूप गोस्वामी ने आप ही कृपा से जान गए। इन सब भावों को समझना। और भगवान का नाम संकीर्तन कलिकाल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। और भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान ने जो कुछ हमको दिया है, भगवान की लीला पढ़ते हैं दशम स्कंद में। सबसे पहले किसको मारा भगवान ने? उतना को। फिर किसको मारा? शकटासुर को, वत्सासुर को। फिर एक कथा आती है धेनु का सुर को मारा, गधे को। तालवन में गए थे जब भगवान, धेनु का सुर कौन है? वो फलदार बहुपन में रहता है जहां फल होते हैं, लेकिन गधा तो फल खाता नहीं। फलदार उपवन में रहता है, किसी को आने नहीं देता। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद दिन भर फल खाता है। गधा तो घास खाता है, फल तो खाता नहीं। तो धेनुकासुर क्या करता है? ना फल खाता है, ना दूसरे को उधर आने देता। तो भगवान जब गौचारण करते थे तो ग्वालों को चराते हुए एक दिन तालवन चले गए। तो ग्वाल वालों ने कहा बहुत खतरनाक गधा रहता है धेनुकासुर। धेनुकासुर का मतलब क्या है? कि मैं भी न खाऊं, दूसरा भी न खाए। ये धेनुकासुर का है। इसे धेनुकासुर को कौन मारते हैं? बलराम जी मारते। बलराम कौन है? शेषनाग के अवतार हैं, सर्वज्ञ। इसलिए ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने जो हमको दिया, हे प्रभु आपको समर्पित, जितनी मेरी जरूरत है, साधु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, या मेहमान भी भूखा ना जाए। प्रभु इतना हमको दें और बाकी समय हम भगवान की सेवा में, उनके नामोच्चारण में। लेकिन भगवत भक्ति में भी हम देखते हैं, भगवत भक्ति के नाम पर कलेक्शन, राजस्थान में एक भक्त रहता, दो शालिग्राम किला मिली थी कहीं से, तो खूब शालिग्राम को तिलक चंदन लगा, लोग आते भोग लगाओ ना शालिग्राम भगवान शालिग्राम, तो लोग सब काजू किशमिश बादाम पिस्ता सब भोग लो। रात को जब मंदिर बंद हो जाता तो उन्हीं शालिग्राम शिलाओं को उठा के बादाम फोड़ के रात भर कर दो। भगवान के नाम से दीजिए दीजिए और अपने जेब में घुसिए। ये क्या है? शालिग्राम फोड़ के बादाम खाने जाता है। भगवान के नाम पर दीजिए दीजिए और अपने घर भेजिए, अपना घर बनाइए। तो ऐसे लोगों को भी देखते हैं हम। देखिए हमने इस्कॉन में भी देखा है, जितने लोगों ने इस्कॉन में चोरी किया, देखो हम तो बहुत सीनियर आदमी है इस्कॉन का, 24 साल से हूँ। हमने तो अभी तक पैसा वगैरह कुछ इकट्ठा किया नहीं, 10 रुपए में हमारी जेब बने, पैदल ही आए नाके से। गाड़ी इस्कॉन का, कपड़ा इस्कॉन का, सब प्रभुपाद जी का है। अगर इस्कॉन से बाहर जाना पड़ा तो बस में जाने के लिए हमारे पास टिकट नहीं है, हमने आपको बता दिया फकड़े। तो इसीलिए हम थोड़ा बोल लेते हैं, क्योंकि अभी जेब में कुछ नहीं इसलिए बोल लेते हैं। कल कुछ हो जाएगा, लग गया हाथ मार लिया तो फिर दूसरे हिसाब से बोलेंगे, क्योंकि चाल बदलनी पड़ती है ना। फिर फिलहाल नहीं है, ये सब बेकार है, बेकार तो फिलहाल नहीं है, इससे बोलना का चांस मिलता है। लेकिन भगवान की ये अनुभव हमने किया, हमारा तो कोई अनुभव नहीं, हमारा साधन नहीं, भजन नहीं, चरित्र नहीं, कुछ नहीं, फिर भी एक दो अनुभव है कि कुछ नहीं होते हुए भी ऐसा महसूस होता है हमारे पास सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति सबका भला चाहता है, हमारा सुबह से शाम तक एक ही चिंतन है, सब लोग अच्छे मार्ग पर आए, भगवान का भजन करें, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है सही मार्ग पर आ जाए, कोई भूखा है उसका पेट भर जाए, पदभ्रष्ट हो रहा है रास्ते पर आ जाए, खाली सोचना, कर नहीं सकते। जैसे कोई भी कहे मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा काजू कतरी पिस्ता बादाम की, लेकिन जेब में पैसा नहीं, खाली बोलता है मुंह, तो खाली ये सोचते हम कभी कभी, और ऐसा लगता है कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया। क्योंकि जो व्यक्ति सबका भला चाहता है, जैसे हम 100 आदमी का प्रसाद बनाए भोजन, तो उसमें एक दो आदमी का प्रसाद तो ऑटोमेटिक होएगा ना, उनको स्पेशली दूसरी जगह कुकिंग करने की क्या जरूरत है। इसलिए जो व्यक्ति दूसरे का भला सोचता है, और भला क्या है कि सब लोग भगवान के भजन करें, भक्त बन जाएं, तो उसका ऑटोमेटिक भला अपने आप हो जाता है। लेकिन कोई कहे नहीं मैं किसी को नहीं, मैं खुद ही खाऊं, तो कभी कभी आपने देखा होगा कई लोग घर में अकेले रहते हैं तो अपने लिए भी नहीं बना पाते, देखा आपने, कौन बनेगा, आलस्य आता है, तो खुद ही भूखे रहते। इसलिए सबका हित सोचने से अपना हित अपने आप हो जाता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं अपनी आत्मकथा में, लिखते हैं प्रभुपाद लीला मत में कि मैं अपने दो बच्चे छोड़ के आया और कृष्ण ने हमको लाखों बच्चा दे दिया, मैं अपनी दो लड़की छोड़ के आया, मेरे को भगवान ने हजारों लड़कियां दे दी, मैं कलकत्ता में अपना छोटा सा घर छोड़ के आया और भगवान ने मुझे पूरे विश्व में महल ही महल दे दिए, किसकी कृपा से। इसे अगर कोई ऐसा आदमी करता है, करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को समझाओ चोरी मत करो, कितना खाओगे। तो ये भी कई दफे सस्ता के नाम से, भगवान के नाम से हम ही कई लोगों को पकड़ते हैं, हमको ही बदनाम कर देते हैं उल्टा। हमारे एक काम ये भी है पकड़ना, हम पकड़ देते तो उल्टा अपना आरोप सब हमारे ऊपर, तो होता तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी, तो ऐसे लोगों को भी सही मार्ग पर आना। चलिए प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी एक ऐसे आचार्य हैं, आप भागवत महात्म्य में शुद्ध गोस्वामी का प्रसंग पढ़िए, भक्ति नारद जी को क्या कहती है, जब भक्ति अपना परिचय देती है, महात्म्य आप लोग ने सुना, अहं भक्ति रीति क्या था इमो में तमयो महतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योग्य न जर जर। फिर क्या कहती है, उत्पन्ने द्रविड़े साहं बिरले कर्नाटके गता क्वचि क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिणितंगता। परिचय क्या दिया कि मैं दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित हुई और गुजरात में जाके बूढ़ी हो गई, गुजरे जिणितंगता। अगला श्लोक क्या है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी। जैसे ही मैं गुजरात से वृंदावन गई ब्रज में, तुरंत नई जवान तरुणी हो गई, सब जगह से वो घूम करके कहां गई, लास्ट समय वृंदावन, और भक्ति का जो गढ़ है वो वृंदावन है, और भक्ति कभी भी ब्रज से बाहर नहीं जाती। जो तरुणी वृंदावन में जाके जिसको अपना तरुण स्वरूप मिला है, श्रृंगार मिला है, वो अपने को बेश्रृंगार करने के लिए कभी वृंदावन से बाहर जाएगी, कभी नहीं जाएगी। लेकिन अगर उसको कोई गारंटी दे कभी कभी लोग गारंटी भी देते हैं कि मैं जैसे तुमको ले जाऊंगा वैसे ही यहां छोड़ जाऊंगा, तो जरूर जाएगी। अगर हम किसी को कह दें, किसी माँ बहन को कह दें, किसी पुरुष को कह दें कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, मैं जैसे आपको घर से ले जाऊंगा वैसे ही घर में छोड़ दूंगा, तो कभी कभी आदमी विश्वास में आकर के उसके साथ चला जाता है, जाता नहीं जाता। वैसे ही प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं, भक्ति वृंदावन से बाहर न जाते हुए भी प्रभुपाद जी के साथ विदेश चली गई, ऐसा आचार्य कोई नहीं हुआ बेटा। क्योंकि उन्होंने भक्ति को उसी रूप में पेश किया जिस रूप में वृंदावन में है, उसका श्रृंगार मतलब उसको उसी रूप में वृंदावन में वापस लाना, मतलब कि प्रभुपाद जी ने भक्ति को उसी तरह से हर देश में प्रस्तुत किया जो भक्ति का स्वरूप वृंदावन में है। ऐसा आचार्य आपको या गौड़ी आचार्य मिलेंगे जो उनकी परंपरा में दूसरे श्री प्रभुपाद जी के अनुगत्य में या उनके गुरु भाई लोग, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग ऐसे महापुरुष के चरणों में सेवा करते हैं या भजन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये छोड़ दीजिए कि अरे फलाने के उसमें तो 1 लाख आते हैं, 2 लाख आते हैं, ये सब गुरु घंटाल है, हम आपको बता रहा है। ये जितने बाहर आपको ये मिल रहा है चमक दमक कथा में 2 लाख आदमी 3 लाख आदमी, एक भी गुरु नहीं है इसमें, ये सब गुरु नाथ के नाम पर घंटाल है। लोभी गुरु लालची चेला नरक में भाई खेलम खेला, 28 तरह के नरक होते हैं, अभी नरकों का भी विस्तार करना पड़ेगा या अभी ऊपर जाके पता लगेगा, फिलहाल अपने को तो कुछ मालूम है नहीं, भागवत में खाली 28 का वर्णन है, लेकिन जिस हिसाब से ये गंदे काम हो रहे हैं मेरे को लगता है 28 नरकों से काम होगा नहीं, ये डबल करने पड़ेंगे, एक्सटेंशन करना पड़ेगा। जब इधर इतना एक्सटेंशन हो रहा है, जहां जंगल थे टॉयलेट करते थे लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई, तो ऊपर की तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो ऐसे गुरुओं के चक्कर में जाना मत। गुरु कौन है? जो भगवान का भजन सिखाता है, नाम जप करना सिखाता है, खुद भी जप करता है, ये नहीं कि खुद कचौड़ी खाता है तुमको बोलता है जप करो, हम तो गुरु हैं भगवान हो गए अभी, और तुम जप करो, जप करना तुम लोगों का काम है, हमारा काम सिर्फ। तो गौड़ी वैष्णवाचार्यों में ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय में जो वैष्णव हो, और उसमें भी हमारे इस्कॉन जो संस्था है श्री प्रभुपाद जी द्वारा संस्थापित, इसमें जो भक्त लोग हैं ऑथराइज गुरु हैं, उनके शरणागत होकर के शरणागत होकर के श्री प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण की सेवा करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते, तो सौभाग्य हमारे लिए। हमको एक बार एक विदेशी आदमी मिला, कई साल पहले की बात है, तो कई जगह आपने देखा होगा कई लोग एकदम पागलपने में बात करते हैं, तो बोला, हमने कहा आपने दीक्षा लिया? बोला लिया। किससे? ब्रह्मा जी से। तो लेकिन तो हमने कहा आपने, बोला हम प्रभुपाद जी को बहुत बार मिला, तो हमने कहा आपने प्रभुपाद जी से दीक्षा क्यों नहीं लिया? बोला ये हमारा गलती हो गया, हम ब्रह्मा जी से पहले ले लिया, नहीं तो प्रभुपाद इतना अच्छा आचार्य कि हम उसी से दीक्षा लेता। पागलपना में बोल रहा था लेकिन हिसाब से बोल रहा था। तो वैष्णव आचार्यों की जो सनातनी वैष्णव है उनके शरणागत होकर के दीक्षा भजन ये सब, अगर आप इधर उधर गए तो टाइम पास होगा सिर्फ, इसलिए जो भगवान का भजन करते हैं, यत्रो तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तु यते ग्राम्य कथा विघात निश्चे विमानो नुदिनंग मुमुक्षु मतिं सतिं यत् सति वासुदेव। महाराज भरत रहुगुण को कहते हैं, जिन लोगों ने अपना जीवन भगवान की सेवा में प्रचार समर्पित कर दिया है, और जिनका आचरण भी वैसा है और जो भजन मार्ग में लगे हुए हैं। गीता के नवम अध्याय में भी एक श्लोक बताया, अपिचेत शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रहवत मंतव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही सो। ये श्लोक की चर्चा एक बार स्वर्ग में हुई देवताओं के बीच में, तो देवताओं में बात विवाद चल गया, झगड़ा होने लगा। इंद्र बोला ये कैसे हो गया, श्लोक का अर्थ क्या है, अपिचेत शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाग, अगर कोई व्यभिचारी दुराचारी अत्याचारी भी भगवान का भजन करने लग जाए तो उसको अभी भी मानना चाहिए। कौन से यो प्रतिजानी यो नमे भक्ता पड़स्तदी, गीता में भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि जो मेरा जप करना शुरू कर देता है भक्त बन जाता है उसका कभी नाश नहीं होता कहते हैं। तो देवताओं में बात विवाद छल गया श्लोक के ऊपर, तो उन्होंने कहा निर्णय कौन निकालेगा, मतलब हमारी समस्या का समाधान कौन करेगा। तब देवताओं में से एक देवता बोला कि नवदीप मायापुर में उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उनको लेके आओ। तो सिल भक्ति विनोद ठाकुर उस समय हिंदुस्तान में तीन ही, ब्रिटिश शासन काल की बात है, हमारे भारतवर्ष के तीन ही हिंदुस्तानी जज थे जिनमें भक्ति विनोद ठाकुर एक थे, ब्रिटिश टाइम की बात है, और वही उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो ऐसा वर्णन मिलता है, ये बात बहुत सीक्रेट है हमारे ग्रंथों में, कि भक्ति विनोद ठाकुर को स्वर्ग ले जाया गया इसी शरीर से। इसे भक्ति विनोद ठाकुर के नाम के आगे कौन सा शब्द लगता है, सच्चिदानंद घन, चलो भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने देवताओं की इस बात विवाद का समाधान किया इस श्लोक के ऊपर, और देवता लोग बोले हाँ आपका जजमेंट एकदम सही है। तात्पर्य क्या है, अगर कोई व्यभिचारी अत्याचारी पापाचारी भगवान का नाम जपने लग जाए तो उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों, क्योंकि भगवान के नाम और कथा में इतना प्रभाव होता है कि अगर वो जपने लग जाए तो एक दिन उसका अत्याचार व्यभिचार सब नष्ट हो जाएगा। चैतन्य महाभारत में तो यहां तक वर्णन है, मुरारी गुप्त प्रसंग में ये बात कही कि जीव मनुष्य अगर कोई पाप करने की फैक्ट्री खोले, कोई कहे अब सब इंडस्ट्री पूरी हो गई, अब मैं एक पाप इंडस्ट्री खोलता हूं, तो हेड ऑफिस बंबई मेरा रोड, ब्रांच ऑफिस अलग अलग जगह, लेकिन उसमें पाप ही पाप, सब पक्की मशीन बनेगी। तो चैतन्य भागवत में मुरारी गुप्त प्रसंग में बताया कि कोई मनुष्य अथक प्रयास से पूरे विश्व में पाप की इंडस्ट्री खोल के उतना पाप नहीं कर सकता जितना पाप भगवान का एक नाम नाश कर सकता है। भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है जितना मनुष्य प्रयास करने पर भी, पाप की फैक्ट्री खोलने पर भी पाप नहीं कर सकता। ये भगवान के नाम की महत्ता है। उल्टा नाम जपने में भी महत्ता है। वाल्मीकि कौन थे, डाकू। नारद जी ने उनको राम राम जपो थोड़ी कहा, मरा मरा जपो कहा, कहा नहीं कहा, तो मरा 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 में राम में आ गए। उल्टा नाम जपा हरि जाना वाल्मीकि भई। जब उल्टा नाम करने से कोई व्यक्ति ब्रह्म के समान हो सकता है, रामायण जैसा ग्रंथ लिख सकता है, तो हम ठीक ठाक होश हवास में हरे कृष्ण बोलेंगे तो हम भी कोई ग्रंथ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ग्रंथ, नहीं भी लिखेंगे अपना कल्याण होगा नहीं होगा, जरूर हमारा कल्याण होगा। इसलिए भगवान के नामों का आश्रय लेकर के जीवन में और जो व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेता है, भगवान के नाम पर जिसका पूर्ण विश्वास है, वो कभी भी मौत से घबराता नहीं है। श्री प्रभुपाद जी इसके खुद प्रमाण है। पहला प्रमाण तो है एक आचार्य हैं महर्षि अरविंदो, ये दूसरे पंथ के आचार्य हैं। महर्षि अरविंद को एक बार एक डाकू लेके खड़ा हो गया। एक गीता पर थीसिस लिख रहे थे भगवत गीता, और इनके रूम में गया कमरे में और डाकू निकाल के इनकी कनपट्टी पर रख दिया, बोलो बोलो अभी गला उतार देता हूं। महर्षि अरविंदो ने कहा, तुमको किसी ने हमको मारने के लिए भेजा है ना, तुमको इसके बदले में पैसे मिले हैं और आपको पैसों की जरूरत है, तो तुम जरूर ये काम करो, लेकिन मुझे एक घंटे का टाइम तो दो। मैं गीता पर थीसिस लिख रहा हूं, मेरी एक घंटे की थीसिस बाकी रह गई है, अगर मैं इसको पूरा नहीं करूंगा फिर कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा मेरे पास, तो क्या तुम मुझे एक घंटे की मोहलत नहीं दे सकते? तो वो जो डाकू था कहा, तुम सोफे में बैठ जाओ। तब तो महर्षि अरविंद थीसिस लिख रहे थे और ये चोर जो डाकू है उनकी चेहरी की तरफ देख रहा था। कोई हमसे कहे ठीक 5 बजे आप ऊपर चले जाओगे, क्या होगा अगर हम जूस पी रहे हैं, तुरंत जूस नीचे रखेंगे नहीं रखेंगे? 5 बजे अभी आज के अरे हम अपनी बात बताएं, परसों रात हमारे इधर थोड़ा सा दर्द हो गया, तो मैं ऐसे ऐसी दवा रहा था, गांध जैसी दिखाई थी, मैंने कहा कैंसर हो गया, तो मैं कुछ अच्छी मैंने दाल बनाई थी, मैं खुद भी प्रसाद बनाता हूँ, और चपाती बनाई थी, मैंने घी लगाया था, मैं खाने ही वाला था, इतने में गांठ पर हमारा हाथ लग गया। हमने कहा कैंसर है, अब 2-3 साल में लगता है ऊपर चले जाएंगे। तो मैं 5 रोटी बनाया था, 2 ही खाया, बड़ी मुश्किल। तो कल मैं डॉक्टर आलिम चंदानी के पास गया भक्ति बदलता हॉस्पिटल में, उसने कहा बोझी कुछ नहीं इन्फेक्शन है। तब कल रात मैंने 4 रोटी खाई। अपना अपने से शुरुआत करता, ये है हमारा हाथ। तो महर्षि अरविंद जब थीसिस लिख रहे थे तो इस चोर उनके चेहरे की तरफ देखता है। जो आदमी 1 घंटे बाद मरने वाला उसका चेहरा कैसा होगा, लेकिन महर्षि अरविंद के चेहरे पर कोई सिकुड़न नहीं। थीसिस लिखते जाते हैं, लिखते जाते, कोई डर नहीं। ये नहीं कि मैं 1 घंटे बाद दुनिया से चला जाऊंगा अब क्या होगा, कोई डर। जब 1 घंटा हुआ उनकी थीसिस पूरी हो गई, कहा अपना काम करो। वो जो लड़का उनको मारने आया था तो घबरा गया, चरणों में गिर गया, कहा कि 1 घंटे से मैं आपको देख रहा हूं, आपके अंदर कोई डर नहीं, और मैं आपको मारने आया हूं, मैं 1 घंटे से कांप रहा हूं कि कहीं पकड़ा ना। इसके चरणों में शरणागत हो गया। श्री प्रभुपाद जी अमेरिका से आ रहे थे, आप लोगों में से कई लोग ये घटना जानते होंगे। तो प्रभुपाद जी रोलेक्स वॉच पहनते थे, रोलेक्स घड़ी दुनिया में सबसे महंगी होती है, उसमें हीरे जड़े हुए होते हैं। तो प्रभुपाद जी के हाथ में वो घड़ी थी, तो ये एयरपोर्ट पर कुछ स्मगलर लोग रहते हैं और उन्होंने वो घड़ी को देख लिया और प्रभुपाद जी का पीछा किया, तो हरे कृष्णा मंदिर जुहू में आए, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि घड़ी कैसे छीनी जाए, क्योंकि लाखों रुपए की घड़ी उस वक्त, अभी तो करोड़ों की होगी। तो दूसरे दिन प्रभुपाद जी सुबह क्लास देते थे भागवत का 8 बजे, जैसे हमारे मंदिर में होता, और क्लास के बाद जो क्लास देता वो पूछता कोई प्रश्न, कोई किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कॉमेंट्स है? तो प्रभुपाद जी भी कहते कोई एनी कॉमेंट एनी क्वेश्चन? तो ये बोला तो सहार एयरपोर्ट से घड़ी के पीछे पड़ा था, कहा हाँ मेरा क्वेश्चन है, लेकिन मैं अकेले में पूछना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने अपने सब शिष्यों से कहा बाहर जाओ, तो सब शिष्य बाहर चले गए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। तो इसने रिवाल्वर निकाल करके प्रभुपाद जी की कनपट्टी में रख दिया और कहा कि ये रोलेक्स घड़ी हमको दीजिए, मैं कल से आपके पीछे पड़ा हूं। प्रभुपाद जी ने कहा, एक रोलेक्स के चक्कर में रिवॉल्वर निकालने की क्या जरूरत है, हम आपको रोलेक्स दे देंगे, लेकिन जैसे आज हमारी क्लास में आप बैठे थे ऐसे ही 6 दिन और बैठिए, एक दिन आज हो गया 6 दिन और बैठो, 7वें दिन पूर्णाहुति के दिन मैं घड़ी तुमको दे दूंगा। तो 7 दिन तक उसने क्लास अटेंड किया और प्रभुपाद जी ने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई कि किसी ने हमारे कान में बंदूक रखा था। और 7वें दिन कहा कि ये लीजिए घड़ी। तो जैसे ही कहा तो भगवान तो प्रभु जी जुहू मंदिर में रहते हैं, इधर भी आते रहते हैं, नाम लेना ठीक नहीं, कहीं पता लगेगा हमारा गला पकड़ेगा, तो जिनको मालूम है आपस में एक दूसरे को बता देना, हम बीच में फंसना नहीं चाहते, जुहू में ही रहता है, अच्छा आदमी है। तो शरणागत हो गया और प्रभुपाद जी ने उसको सेवा दिया कि अभी ये मंदिर में मंदिर निर्माण हो रहा है, जुहू मंदिर, उसमें जुहू मंदिर जंगली जंगल था, कुत्ते बहुत आते थे, तो कहा तुम्हारी ड्यूटी है सुबह से शाम तक कुत्ते गेट के अंदर नहीं आने चाहिए, कुत्ते भगाया करो, क्योंकि जैसा क्वालिफिकेशन वैसी सेवा मिलेगी, कुत्ते वाला काम करोगे तो कुत्ते भगाने पड़ेंगे, सुअर वाला सुअर करो, क्योंकि अच्छे काम करोगे तो तब ड्यूटी की सेवा मिलेगी। तो ये आचार्य लोग सेवा भी फिर करते हैं, सेवा किसको मरा मरा जपना है, किसको राम राम जपना है, ये आचार्य लोग फिर करेंगे। तो इतना ताकत भगवान के नाम में कथा में है, इससे इसका आश्रय लेकर के अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना है। समय बहुत कम है, जंगल में आग लग गई है, तो जब जंगल में आग लगती है तो क्या होता है, सब शेर हिरण बाघ सब जंगल छोड़ के भाग जाते। वैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाए, 16 माले 20 माले की बिल्डिंग है, आपने फ्लैट लिया 5 करोड़ का, ठाट बाट से सोए हैं, अचानक लग गई, जो सिक्योरिटी वाला है जिसको सबसे कम पगार मिलती है वो बच गया, गेट पे बैठा हुआ है, वो तो बिल्डिंग के अंदर था नहीं, और जो 5 करोड़ का मालिक है फंस गया, उसने आवाज लगाई निकलो, पूरी बिल्डिंग को आग पकड़ लेगी 1 घंटे में, तो जल्दी जल्दी भागो अपनी जान बचाओ। और उसमें से कई कंजूस होते, मेरा बैग रह गया, जूता पहन के निकलेंगे बाहर, या थोड़ा सा मेकअप कर लें या दाढ़ी बना लें, इस चक्कर में रहेंगे फूक नहीं जाएंगे। इसलिए सुनते ही दौड़ लगानी चाहिए, जैसे ही सुना आग लग गई 1 घंटे में पूरा बिल्डिंग जल जाएगी, कोई गारंटी 1 घंटे में जलेगी 10 मिनट में, इसे जिधर से रास्ता मिले उधर से बिल्डिंग से बाहर निकल के अपनी जान बचाना पहला कर्तव्य है। अरे मैं सूटकेस लेके आओ, कौन पड़ गया चक्कर में, जरा मेरा सूटकेस तो ले आओ, मेरा क्रेडिट कार्ड ऊपर ही रह गया, इस चक्कर में दोबारा बिल्डिंग में चलेंगे क्या होगा, क्रेडिट के साथ हम भी गए ना। इसलिए संसार में वासनाओं की कामनाओं की, भगवान की भक्ति के विरुद्ध विचारों की मान्यताओं की आग लगी हुई है, कुविचार बाहर सारी व्यवस्थाएं हमको बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ी हैं। तो ये आग लगना हुआ नहीं हुआ, और ऐसे आग लगे हुए शहर में सोसाइटी में जंगल में अगर कोई व्यक्ति हमको उस अग्नि से बाहर निकालना चाहे तो हमको उसका मार्गदर्शन, उसकी बात माननी चाहिए और अपनी जान को बचाना चाहिए। इसलिए कली काल बुराइयों का खजाना है, आग लगी हुई है, कलेर दोष निधि राजन, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आग लगी है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम। कलयुग बुराइयों का खजाना है, लेकिन एक गुण इसका बचाने वाला है, कौन सा? भगवान का कीर्तन। कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन, कीर्तन उनकी कथा हमको भव रूप से इस भव सागर से पार लगा सकती है। इसलिए इस नाम का आश्रय लेकर के इस संसार में जितने दिन तक ये शरीर रहे और जब शरीर छूट जाए, कोई दुख की बात क्योंकि हमारी पूरी तैयारी हमारे साथ है, परलोक में भी हमको अच्छी पोस्ट मिलेगी। कोई आदमी हमको कहे कि तुमको 20 साल का अमेरिका का वीजा देते हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे? भले ही हमें यहाँ मेयर रोड में नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अच्छे जगह चले जाएंगे। वैसे भजन करने के पश्चात भले हम इस संसार को छोड़ देंगे, दुखी भी होंगे कुछ लोग, हमको भी दुख होएगा, लेकिन हमें कैसा स्थान मिलेगा जिस सुख की बड़े बड़े लोग कामना करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जिस सुख को तड़पते हैं। हम भगवान की नित्य सेवा में, उनके धाम में, भगवान की सेवा में चले जाएंगे। भगवान जैसे ही सुंदर हो जाएंगे, जो जीव वैकुंठ जाता है उसका रूप कैसा होता है? जैसे भगवान होते हैं वैसा ही रूप होता है। तो सब फैसिलिटी भी विष्णु भगवान जैसी मिलेंगी अपने को, नारायण जैसी। भगवान की पहचान कैसे होती है वैकुंठ में? शंख चक्र गदा और पद्म जिसके हाथ में रहेगा पहचान होती है, ये विष्णु है, नारायण है। बाकी सब भगवान जैसे हो जाते हैं, उनका शरीर वैसा ही हो जाता है, सब सुखी हो जाते हैं, वहां भूख प्यास नहीं सताती है। ऐसा भागवत में, पुराणों में, उपनिषदों में, महापुरुषों की वाणी में कहा जाता है। तो अगर हम भी पालन करेंगे तो जरूर हमारा कल्याण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gao taali bajao jao Hare Krishna
Thank you. बारे में भर कर रहा हूँ पानी
नहीं
भरा साइड करो दीदी के पास ले गठी उठा दोनों होते हैं वो एक ही जरूर एक पानी लगा दो
उधर है ना
ये लगा के धोना है
हाँ तो क्या दे दो ना पानी मारेगा
ना इधर की है
ये पानी चालू करके आता हूँ
उसमें जब तक भर जाए
हाँ वाकई
चला गए।
जल्दी है ये सब तो मालूम नहीं टाइम है। अरे यार पांव कितना छुआ है आपको
क्या
यार सीनियर भक्त हो यार नहीं चले जा रही आप मछुआ आप इतने चार साल सीनियर में भी आया हूँ
अभी क्या आपको
चार साल
यहाँ पर
नहीं लेकिन आप
अब इधर करो इधर इधर मैं उधर करता हूँ मैं अंदर करूँ दो बाल्टी पानी मारो एक बाल्टी मारो निकालेगा आपको डाक सुनेगा देखना शाम को फिर सब जल्दी तो वो गिरा देगा ये ऐसे लगा के रख लो सुबह शाम को डाक रखा होगा हम तो वो डाक किया था मालूम उसके लिए चार्ज के लिए लगाया पानी हो जी पानी लिखो
मैं ला मैं लाता हूँ
भर के लिए अरे कित पानी मान तो संदेह ना कितना कितना कचरा देखे ना मुझे एक काम करूँ अब फटाफट जितना फूल सब है ना उठा लो अच्छा है तो ना बैठा जितना में पूरा घुस जाएगा मैंने किधर नहीं आप किधर इधर बार बार डेली पियो फिर उसके कर दो ठीक है फूल जल उठा लो
नहीं
पैसा मांगूंगा तो मैं थोड़ी जाने वाला हूँ मुझे क्या टेंशन है नहीं यार ले जाना मरना थोड़ी है ना कि मैं पाँव खराब हो गया आपको कौन उठाए कोई उठाए क्या डालेगा वो क्लास है आप कैसे वो क्लास ले रहे आपको कैसे उठाए वो क्लास दे रहे थे हरिओ चलो हरिओ चलो चले चलो उसको उसको बाहर करो प्रभु
आप लोग बाहर जाओ आप
लोग कुर्सी उधर
मोर इधर है
सब ए पांडे नाम
देख ला हूँ
तो ये जो भी अच्छे से धोना है
ये
पूरा सेट करके धोना है ये सब बाहर सेट करके
हम लोग ऐसे ही धोता हूँ पूरा हटा के
आप पोचे अच्छे से मारो वह फिर मारे पोछा तो मन में है मालूम है ना, हमको देखूंगा मैं पोछा, अब मेरा देखना अब मैं आपको देखूंगा। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, जब तक मैं रहूंगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं पता लड़ाई करने वाला झगड़ू हूँ, इसको अंदर करो ना, ये लकड़ी को लकड़ी को आनंद आ गया। सुनो सर महाराज, उत्तर तक ये है ना, उधर ये रहते ना लकड़ी है ना उधर, ऐसा कहाँ रखो
वो
है ना लकड़ी
گیٹ بند میں کوئی نہیں آنے دیں گے ہم. میں ہوں نا ادھر دیکھو کیا لگا, اس کے اندر کچھ لگا ہے لکڑی کے اندر. ہو جی لکڑی کے اندر کچھ لگا ہے, نیچے 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 کچھ لگا ہے. نہیں جائے گا یار مندر دھول آدمی کا نہیں آئے گا. اس کو معلوم ہے مندر دھو جائے گا تو گندا ہوگا. نہا سنا کے آیا کپڑا دھو کر میرے سو جی مجھا دو نا اور بتی پورا جل جائے گا. اندر آئیں گے نا اس کے اندر کرتی کرتی میں پورا کرتی ہے. हरिबोल 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 अभी आई थी मंत्र अंदर मतलब मत देखो देखो उसके अंदर पानी नहीं है, कोपर के अंदर कोपर के अंदर पानी मारा था आपको 5000 रुपये में 10000 मिल रहा था मालूम है पूरा पैकेट बैग में मंदिर में अच्छा 10000 मिला ना तो हम खोल खोल के देते वो मंदिर में भूल गया मैं कब से डाल दिया वो आया बाहर में करो आप इधर मारमन बैठे और पूछा इधर बहुत और पानी भी गए जमीन बैठे जल्दी करो माता जी, अभी मंदिर बंद है माता, कोई बात नहीं, पूजा मत करो।
अब उन्हें उठो तो क्या करेगा, तुझे चला गया क्या? मैं तो 3 बाल्टी पानी मारा था। अब अंदर आप कितना मारा है? हैं? अब बाहर कितना अंदर मारा है? अब कितना बाल्टी मारा है? हैं? 2 बाल्टी?
क्या?
इधर कितना पानी मारा है? अब
मैं 1 बाल्टी।
बस? इधर 3 बाल्टी मारा है। हरे मेरे कृष्ण हरिभा हरिभा पानी क्यों गंदा करो हरिभा पानी क्यों गंदा करो इससे पानी क्यों गंदा करो धोने के रहते ना मंदिर गंदा पानी से छोड़ क्यों जाएगा पी सकते है मंदिर धोने के पानी
हाँ।
हो गया
वो लगा दे दे
रुक ना आते फिर धोने के तुम ना फिर कोई निकालने को नहीं करेगा पानी निकाला छोड़ दिया
तो हो गया ना इधर साइड का मेरा नहीं ना चलेगा दो बार एक बार और मार दिया हो गया इधर का पानी निकाल लो डूब जाएगा
प्रसाद लेते ना शाम को नगर संकीर्तन चलने का
क्या
आज ना 4 बजे क्लास सेटिंग करके सर 4 बजे हमको चलना है नगर संकीर्तन है महाराज तू गंदा क्यों कर गंदा निकल महाराज
صاحب اکیلا ہی ایک دم اور بھی وہ کچھ دن پہلے وہ ایک نیا مکتا وہ میڈنگ میں جاتا تھا وہ بھی جوائن ہوا وہ کدھر وہ کا اس کا بھی بیچ بیچ میں رکھتا ہوں
دوست دو ابھی نئے نئے تین ہیں
دوست
ہے کدھر ہے کدھر سب الگ الگ سیاح ملتے ہیں نا سب ایک
مندر کا
ہاں کسی کے آشرم میں کسی کے باتھ روم کا
ایسا پورا ہاں
سسٹم بنا ہے نا मोस्ता मोस्ती आया है बोलते मैं मोस्ता मोस्ते मैं दर्शन करने के जा रहा हूँ मैं मंदिर बाहर ही दूंगा तो ठीक है जा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे Hare 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 Hare
Watchman! अरे चलो इस पर खड़ा हूँ जो हुआ इसको मैं बंदे मतलब
Next one there.
Next one there. बचमैन चालू करना पड़ेगा सिक्योरिटी कितने रहे उधर का इधर सिक्योरिटी कितने का
बाथरूम कितने जाएगा बाथरूम का
क्या हो गया गेट खुला है ना पंद्रह दिन है कुछ घर हो गया
बाथरूम कितने जाएगा बाथरूम क्या हो
कितना झूठ है मैं झूठे के
Thank you.